का यदि थोड़ा सा भी अनुराग हो तो उस अनुराग को वो बहुत समझते हैं। थोड़ा सा भी कोई वस्तु उनको दे दे, जैसे पत्रम पुष्पम अलमतोयम जो मेरे भक्त्या प्रयच्छ तदहम भक्तु भक्तम स्नामी प्रजता। जो लोग बड़े प्रेम के साथ में बड़े प्रयत्न के साथ में कुछ भी नहीं रहने पर पत्र पुष्प सूखा तंडुल का टुकड़ा फल शबरी का फल सुदामा वित्र मंगनी मानकर खुद ले गए, हो सकता है उस खुद में धान के टुकड़े भी और लेकर के गए। अब कृष्ण ने उसको क्या माना, अब इसके बदले में मैं मेरे पास में कुछ नहीं देने को है, क्यों इनके तो घर में कुछ नहीं था, वो मंगनी मांग करके ले गए, कृष्ण को कुछ मंगनी मांगना नहीं, सारा ऐश्वर्य इनके पास में है, मंगनी मांग करके तो देंगे नहीं, अब इनको क्या इसके बदले में दें। और सब कुछ भी इनको देकर, सब कुछ तो नहीं थोड़ा सा कुछ दिया, और सोचा जी लज्जा से जो इसको आमने सामने नहीं देना चाहिए, इसलिए लज्जा बसत रात में उनको इनके अलक्षित रूप में ये सबको इनको दिया। और फिर भी अपने को मानते जी मैंने कुछ नहीं दिया। इसी प्रकार से भगवान के लिए जो थोड़ा सा भी साधन करते हैं, कृष्ण के लिए सचमुच में घर बार स्त्री पुत्र परिवार सबको छोड़ रुपया पैसा मान अपमान सब छोड़ करके जो कृष्ण के लिए थोड़ी सी भी छोड़ करके आते हैं, भजन पूरा भी नहीं हुआ, कृष्ण कहते हैं कि मैं उनको कदापि नहीं छोड़ सकता। इस तरह से थोड़ी भी चीज यदि ये कर रही है श्रीमती राधिका, कृष्ण में ऐसे सब गुण हैं जो हम लोग उनकी सेवा कुछ नहीं कर पाते तो भी इसको बहुत मानते हैं और अपने ऋणी बन जाते हैं, न पारे हम निर्वर्त संग जाते। और गोपियां उनसे बातचीत करना चाहती हैं श्रीमती जी, कृष्ण बहाना बनाकर वो लज्जा से बोल नहीं पाती क्योंकि उनको लज्जा अधिक होती है, बोल नहीं पाती। कृष्ण ऐसा बहाना बना करके उनसे बातचीत करते हैं, कृतज्ञता स्वीकार करते हैं और ऐसे रूप में व्यवहार करते हैं जिसे ये दिन भर रात भर स्मरण करते हैं गोपियां। ऐसे मुझे कृष्ण कैसे सुंदर हैं, कैसे सुंदर बंसी बजाते हैं, कैसे कृपालु हैं, अहेतु की कृपालु हैं, और सब उनमें विशेष करके नायक के जो गुण हैं उन गुणों का ये स्मरण कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु संताप यदि जैसे प्रणत का मधु मधुर या गिरा कल गया पुष्करे क्षण विधि करी इमां मान मुह्यते मन विधि करी इमां मधुरया गिरा बल्गु वाक्या उधमनोद्या पुष्करे क्षण विधि करी इमां वीर मुह्यते। और भी रहसिताननम प्रेम विक्षणम व्यणं च मे ध्यान मंगलम रहस्य संविदम रहस्य संविदम अकेंत में मिलकर के रहस्य संविदम बड़ी मधुर 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 मीठी मीठी बातें इनसे जिसे वो स्मरण करते करते जैसे श्रीमद् भागवत में प्रेम के बदले कोई प्रेम करता है, जो प्रेम नहीं करने से भी प्रेम करता है, जो प्रेम करे ना करे किसी से भी प्रेम, इसका कितना सुंदर सब चिंतन किया कृष्ण। यह है बुध मनोज्ञ पुष्कर एक क्षण पुष्कर ईक्षण उसका मैंने बड़े कल्याणदायी बड़े प्रेम से उसके तरफ में ईक्षण करते ठठोली बोली कैसे प्रेम से करते हैं, जीवन भर इसको भूल नहीं सकते। महाप्रभु जी उसी को स्मरण कर साथ जैसे जैसे राधा जी स्मरण करते हैं गोपियां स्मरण करते हैं अटक इज्जत भवान नहीं, इसके बाद का अटक इज्जत भवान, इसके बाद इसके बाद अटक इज्जत भवान अन्य कारणम त्रुटि युगायते ताम अपश्यताम कुपिल कुंतलम श्री मुखंते जड़ उदीक्षताम पक्ष कृतिता वृद्ध जनऊ कषाण व्यक्त रंग गति हाँ ये पति सुतान्वय पति सुतान्वय धातृबान्धवान पति विलंघते अंच अंत अच्युता गता गति विदस्तवो गीत मोहिता कितव जोशितो ये सब कितने कितने ये सब का स्मरण ये गोपियां और अंत में कहती हैं न पा रहे हम। देखो तो कैसे ये हैं कृष्ण कैसे मीठी मीठी बातों से था मैं तुम्हारा ऋणी हूँ कोटि जन्मों में तुम्हारा इस ऋणी को नहीं होता। इसी विषय को महाप्रभु जी गोपी भाव से स्मरण कर रहे हैं और होकर के संताप में विवल कर आज कोई नहीं है आज वो मथुरा चले गए द्वारका चले गए अब कोई ऐसा नहीं कृष्ण नहीं बस संताप में विवल राय स्वरूपे कंठ धरी कहे हा हा हरी हरी धैर्य गेलो हरी चप्पल धैर्य गेलो मैंने और चप्पल हो गया मैंने धैर्य मैंने हरी क्या धैर्य राय और स्वरूप राय रामानंद स्वरूप दामोदर के कंठ को पकड़ करके कहे हा हा हरी हरी रोने लग गए और उनका धैर्य टूट गया
दूसरा अनुभव
चला गया मैंने जो बात नहीं कहनी चाहिए जो बात नहीं कहनी चाहिए उनका धैर्य टूट गया। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो नहीं कहा जा सकता और उन बातों को सफल होकर और उसको बहुत सी ऐसी बातें होती हैं या प्रियतम में या स्त्री पुरुष में या घर में भी रहता है ऐसी बात जिसको कभी नहीं कहा जा सकता बस एकदम चंचल होकर के प्रिय सखी को पा करके बस कहने लग गए। सुनो बांधव कृष्ण एर माधव सुनो सुनो बांधव हे बंधु हे सखी देखो कृष्ण की माधुरी कैसी है जिसका मैं स्मरण कर रहा हूं जार लोभ है मोर मन छाड़ी लोक भेद था जिसके लोभ से मेरा मन धैर्य को छोड़ दिया छाड़ी लोक भेद धर्म लोक धर्म और वेद वेद का धर्म क्या है पति को स्त्री को पति को नहीं छोड़ना चाहिए छोड़कर किसी के भी पास में नहीं जाना चाहिए यदि पति परदेश गया हो तो स्त्रियों को पान इत्यादि खाना श्रृंगार करना और कहीं दूर में जाना ये सब मना है और कहा उसको छोड़ दिया किस लिए के का से मयूर कहता है के और वो कहती है मयूरी का राधा जी का धैर्य मान लज्जा ये पर्वत के समान है विशाल हिमालय के पर्वत के समान है इसको कौन चकना चूर कर देता है क्षण मात्र में अपने बंसी से स्मित हास्य से कृष्ण उसे क्षण मात्र में दूर कर देते हैं और कृष्ण जैसे मदमत्त हस्ती को कौन बांध करके उसे रख देता है शीकर में कौन श्रीमती राधिका जी का तो यहीं पर जार लोग हैं मोर मन छाड़ी लोक वेद धर्म लोक के जितने भी हैं धर्म क्या सच बोलो झूठ मत बोलो ये पहली चीज शास्त्र जी कहां जा रहे क्या कहें सूर्य पूजा के झूठ बोलती है ये वेद धर्म घर के समस्त पति की सेवा का काम छोड़ करके चला जाए ये भी पति को छोड़ना यह भी वेद धर्म लोक धर्म और इसका अतिरिक्त वेद के सारे धर्म को इसने छोड़ दिया है जो भी हो या वैदव दिखाए ये सबको छोड़ करके जोगी होकर के भिखारी बन गए। जोगी होने पर बड़े बड़े राजा लोग भारतवर्ष में जोगी हो गए। जोगी दो प्रकार का, यहाँ पर भक्ति जोगी को नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जोगी जैसे बिहार में एक जोगी हो गए, वो सारंगी बजा करके, तुम जानता है सारंगी बजा करके गीत गा करके भिक्षा मांगते थे, अब करते हैं। उसका नाम कौन जोगी, जैसे गोरखनाथ जी कैसे बड़े राजा के लड़के और विवाहित सुंदर भार्या उच्च कुल धनाढ्य कुल के लोग, उनके गोरखनाथ के गुरु कोई थे गोपीचंद लखिंदर मच्छिंदर उनको यह पहले बचपन में थोड़ा सा सुना होगा। भिखारी बन गए और वो लोग कान में कुंडल पहन लेते हैं, शंख का, सोने का नहीं, शंख का कुंडल। शंख इसलिए कि वो एकदम सस्ता से सस्ता हार इत्यादि का बनता है, शंख हार है, इसलिए उसे ग्रहण करते हैं। शंकर जी जैसे कि मुंड माला इत्यादि धारण करते हैं, शंख का कुंडल धारण करते हैं और धारण करके देश देश इसमें जाकर के भिक्षा मांगते हैं और अपना जीवन किसी प्रकार से निर्वाह करते हैं। और ऐसे जोगी जो कुछ कहते हैं बस हो जाए, मैंने संसारिक भक्ति से कोई संबंध नहीं, ये अष्टांग योग इससे ये जोगी सब, जिसको कहते मर जाए, जिसको कहते दीप हो जाए, जिसको कहते बेटा हो जाए, ऐसे सब हाथ से जो कुछ कहेंगे बस सब कुछ हो जाएगा। इस तरह से जोगी होकर के जात लोग है मोरमा छाड़ी लोग वेद धर्म जोगी भैया राज का राज्य पद छोड़ दिया, स्त्री को छोड़ दिया, जोगी बन गए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी जोगी बने, किंतु ऐसे नहीं कि कान में कुंडल हो, उनका कुंडल क्या था, कृष्ण की कथा ही कुंडल। और बेशक क्या था, भगवान को अर्पित किया हुआ ये सब। सुनो बांधव कृष्ण माधुरी, जाग लोभे मोर मन छाड़ी लोक वेद धर्म, जोगी हैया हई न भिखारी, सुन बांधव कृष्ण र माधुरी। कृष्ण लीला मंडल शुद्ध शंख कुंडल, कृष्ण की लीलाएं जैसे वो लोग धारण करते हैं शंख में कुंडल, कुंडल शंख का, और ये भिखारी होकर के क्या करेगा, कृष्ण की लीलाओं कथाओं का मंडल माने समूह, कृष्ण की लीला कथाओं का दिन रात श्रवण करता है। शुद्ध गढ़ी आ शुभ कारीगर, इसको किसने गठन किया, किसने निर्माण किया, सुखदेव गोस्वामी ने। बहुत तरह के इनके आभूषण है कानों के, जिसमें वेणु गीत, गोपी गीत, जुगल गीत, अमर गीत, ये सब काम के सुंदर से सुंदर कितने प्रकार के ये, बस इसी का स्मरण करते हैं। एक कुंडल काने परी कृष्णा लाऊ थाली धरी, इस कुंडल को कान में धारण करते ध्यानकर्ता ने पहले श्रवण किया, भगवान कृष्ण की लीला कथाओं को श्रवण किया, किसे सुना किया, अनुसुणिया अथ वर्णीय जह, इन्होंने किसे सुना, वेदव्यास से, सुखदेव गोस्वामी, ये अपने आप निर्माण करना नहीं सीखा, और सीख करके अनुसुणिया निरंतर श्रवण किया, और इसके बाद में तृष्णा पैदा हुई, किस चीज की, मैं राधा कृष्ण की सेवा करूंगी या करूंगा, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो तृष्णा लाऊ थाली धरी, लौकी का थाल, कमंडल लौकी का बनता है, वो भी तीता कड़ुआ, कड़ुआ यदि हो लौकी, उसको पहले काट करके कच्ची स्थिति में और उसको सुखा देते हैं, फिर साफ करके इसमें कोई कीड़ा न लगे, पानी गंदा ना हो, इसलिए उसको सुखा करके अच्छी तरह से पूजा। ये अब उसमें वो क्या करते हैं, तृष्णा, यह है तृष्णा खाली है ना, उसी को लेकर के भिक्षा के लिए जोगी लोग जाते हैं घर घर में भिक्षा कुछ कर, भिक्षा कर, किसी ने रोटी दे दिया, किसी ने दाल दे दिया, किसी ने सब्जी दे दी, जो जरूरत है उसी को उसमें रख दिया। उसी तरह से तृष्णा रूपी लाऊ का वो पात्र धरी धारण करके आशा झूली कंधे रूप, आशा की झूली कंधे कंधे पर लटका दिया, काम में तो वो उसे तृष्णा पैदा हुई, तृष्णा मैंने लोभ उत्पन्न हुआ, और लोभ होने पर अब जीवित रहता है किस आशा भरई हम सिंध मयी कथंचित कालो मया की गमिता कल किलशाम कथम दे पंचे कृपा मई विधास्त सुनई प्राण ब्रजेण बरोरु आशा भरई अमृत सिंध मयी कथंचित। जब रूप गोस्वामी से स्वरूप दामोदर आय रामानंद से महाप्रभु के स्वयं मुख से रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्रवण किया ब्रज की लीलाओं को, तो इनकी आशा मैंने लाख मुख धारण कर और उस रस की लीला का पान करने के लिए आतुर हो उठी। माने क्या, वृंदावनेश्वरी कदा वृंदावनेश्वरी वयोगुण रूप लीला सौंदर्य केली जलधे करुणावते, कितनी वो संकल्प कल्प द्रुम, एक ऐसा कल्प द्रुम है, एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिसमें फल लगे, कितने फल अनंत, उसके आशा कैसी है उन फलों को पाने के लिए लाखों प्रकार के लिए ये आशा करो, और जीवित नहीं रह सकती तभी अभी मिल जाएगा, ये आशा से कृष्ण मिलेंगे, उनकी सेवा मिलेगी, इसलिए जीवित रह। कृष्ण के मथुरा जाने पर वहां से फिर द्वारका चले जाने पर गोपियां किस लिए जीवित हैं, कल आएंगे कृष्ण ऐसा कह करके गए हैं, यही आशा के लिए वे जीवित, नहीं तो कभी मर जाते। कृष्ण ने कहा जी मैं जरूर आऊंगा, कृष्ण जरूर आऊंगा, और यदि आ गए और हम इसी बीच में मर गए तो कृष्ण को बहुत दुख होगा, ये दुख नहीं सह सकते, इसलिए आशा भरी अमृत सिंधु मय। आशा कैसी है, यदि समुद्र अमृत का समुद्र हो कैसी, अथा अनंत गभी, ऐसी इनकी आशा की का समुद्र जो है वो अनंत है, आर पार नहीं, इतनी आशाएं और वो कितनी गंभीर हैं, जिसका कोई अथा न था, था नहीं है जिसका, ऐसी इनकी अनंत आशाएं इसके लिए राधा कृष्ण की सेवा की प्राप्ति के लिए आशा भरी अमृत सिंध मय कथंचित कालो मया की गमिता किन सांप्रतम ही। मैंने बड़ी दुख से जो अब आशा की पूर्ति हो, अब आशा की पूर्ति होने वाली है, बस इसी आशा से जीवन किसी प्रकार से कथंचित, मैंने किसी प्रकार से धारण नहीं किया जाता तो अभी प्राणों को धारण करके मैं संजीवित हूं। पंचेत कृपा मई विधस्य से नई वकिन, हे स्वामिनी जी, हे मेरी आराध्या देवी श्रीमती राधे, आप तो बड़ी दयालु, यदि आप हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन करके हमारी उन आशाओं को पूरा नहीं करती और आप दर्शन नहीं मुझे देती तो मुझे कृष्ण से क्या जरूरत है, मुझे वृंदावन बाग से क्या आवश्यकता है, मुझे राधा कुंड से भी रहने की क्या जरूरत है, और फिर इन निकृष्ट प्राणों को धारण करने की मुझे पूरी आवश्यकता है। तो इस तरह से आशा की झूली, फिर कहते हैं उत्साह निश्चया धरिया, निश्चया मैंने क्या और धैर्य मैंने क्या, कृष्ण मिलेंगे ये साधक समझता है, ये कृष्ण मिलेंगे इसलिए धैर्य धारण, हम लोगों की कोई बात नहीं, हम लोग तो खाते पीते आराम से हैं, कोई भी चिंता की बात नहीं, खाते पीते पहनते हैं सोते हैं उठते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं कुछ, बड़े आराम के साथ, इसलिए हम लोगों को ये उन लोगों के लिए है जो यथार्थ में साधक है, भाव के साधक हैं उन लोगों के। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी इत्यादि इस प्रकार से उत्साह निश्चय। निश्चय मैंने क्या, ये आशा रखो जरूर मिले, तो जरूर मिलेंगे तो तब फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, बैठे रहेंगे नहीं, तब तक कर्म प्रवर्तना भक्ति के अंगों का यथाजत पालन करें। तो आशा झोली कांदे इसी झोली का लेकर के भक्त साधक भक्त जीवित रहता है, और जब विचार करता है कि हमें क्या मिला तो देखता है जैसे कुछ नहीं मिला, किंतु तटस्थ होकर के विचार करने पर यह मालूम होता है कि बहुत कुछ मिला। अभी हम लोग सोचते हैं हम क्या है, प्रेमर स्वभाव यही प्रेमर स्वभाव यही प्रेमर संबंध
जाने मारे नहीं,
जिसको प्रेम का जितना ही उच्च प्राप्ति है वो ये समझता कि हमें प्रेम का गंध नहीं है, यह प्रेम का स्वभाव है। श्रीमती राधिका जी कहते हैं कि कृष्ण के प्रति हमारा तनिक भी कोई प्रेम नहीं है। महाप्रभु जी ये जो
प्रेम
ये राधिका जी की उक्ति है, महाप्रभु जी की उक्ति नहीं है। राधिका जी कृष्ण के प्रति सबसे श्रेष्ठ प्रेम राधिका जी को, और वो क्या मानती है, प्रेम का गंध नहीं। मछली को जैसा पानी से प्रेम है, हाय कितना दुर्भाग्य की बात है हमको नहीं है, उन्हें तो चाहिए ऐसे ही, इतना नहीं होता। इसीलिए यहां पर ये कह रहे हैं ये साधक, मान ले कि जैसे कोई भी साधक हो वो कहता जो है हमें कुछ भी भक्ति का बंध नहीं है, जब वो खुद विचार करता है तो ऐसा देखता है, कहां स्वप्न में भी तो कृष्ण नहीं आते, स्वप्न में भी कोई स्फूर्ति नहीं होती, खाने में भोजन में संसार में हमें तनिक भी भयाग्य नहीं है, भयाग्य नहीं हुआ, खाते हैं पीते हैं चल, कभी चित्त द्रवित नहीं होता कृष्ण का नाम सुन करके, चित्त द्रवित नहीं होता, आंखों से स्वाभाविक रूप में आंसू नहीं आते, खेद नहीं होता, होता है कभी कुछ नहीं होता, ऐसे ही निरर्थक जन्म। नरोत्तम ठाकुर जी क्या कहते हैं, गोरा कहूं ना भजिया मैं, गोरा चंद्र जी का गौ चंद्र का जो राधा के भाव से कृष्ण ही है और प्रेम देने के लिए आए, और उनके प्रति हमारा तनिक भी प्रेम नहीं हुआ, ना भजी हूं मैं तनिक में मैंने भजे। उन्होंने तो कितने खेद के साथ में ये पद्य लिखा होगा, गीत लिखा होगा, और हम लोग जिसको तनिक भी हमारे यहाँ पर एक रेखा नहीं खींचती है ऐसा पत्थर और वज्र का हृदय, गोरा पहू ना भजिया प्रेम रतन धन हेला, मैंने सजी मैंने सब कुछ खो दिया है, अधने जतन करी धन दिया, जो धन नहीं है उसको दिए तो मैं दिन भर मरता हूं, जो धन नहीं संसार में लस्तम पस्तम हो रहा हूं, कौड़ी के लिए मर रहा, फूटी हुई कौड़ी भी जानते हैं कि इसमें एक धागा भी लेकर के सुई भी लेकर के नहीं जाएंगे, एक केश भी नहीं जाएगा साथ में, संसार में सब कुछ रह जाएगा, और जिनके लिए मैं कर रहा हूं वो भी हमको कष्ट देंगे, ये सब कुछ समझते हैं, और ये समझते हैं कि वृद्धावस्था आ गई, इंद्रियां जर्जर हो गई, तो भी नहीं मानता, तो भी नहीं, आ जाओ कुछ भजन करो, खाना पीना हम देंगे, घर रहने के लिए देंगे, तुम्हारे घर से अच्छा कर देंगे, जैसा चाहते आ जाओ, नहीं क्यों, तुम्हारी स्त्री है नहीं वो मर गई है, बेटा बेटा मानता है नहीं, तो यही तो दुख है, आ जाओ, अथवा स्त्री है कैसी स्त्री है, काली कलूठी काणी कानी कुरूपिणी स्त्री है,
कलह प्रिया
सब समय कठोर बात के बोलने वाली, घर में रहने के लिए एक दाना नहीं, चूहे भी घर में नहीं रहते क्योंकि कुछ नहीं, केश पक गए हैं, गलितम मुंडम, गलितम मुंडम
गलितम
दंत विहीनम, दांत भी अब नहीं रहेंगे, जानते हैं तभी घोर वृद्ध अवस्था में घोर कठोर करते हैं, आराम से कृष्ण का भजन करने नहीं रहे। एक आदमी से गुरुजी ने पूछा, मठ में रहेगा भिखारी से, कैसा लंगड़ा लंगड़ा भिखारी से, वो गांव में भिक्षा करता था, कोई इतना चावल कोई कुछ दे दिया, गुरुजी ने मठ में रहेगा। इसी समय में कलकत्ते से बड़े बड़े लोग आए थे सीधाबाड़ी में गुरुजी से मिलने। गुरुजी ने कहा कि आप लोग बहुत ठीक नहीं है, क्यों आप समाज के क्रीम को पकड़ते हैं, अतः तो अच्छे बड़े लिखे और बुद्धिमान लड़कों को जो बड़े सुंदर होते हैं समाज के क्रीम को आप लोग लेते हैं, और गरीब निर्धन ऐसे लोगों को आप मठ में नहीं रखते, और नौजवानों को विशेष करके बूढ़ों को भी नहीं रखते। दई बात, उसी समय में एक भिखारी आ गया और वो लंगड़ा चल भी नहीं पाता, खुद सुंदर भी नहीं, भिखारी जैसा कपड़े पहने फटे हुए हैं, भिक्षा मांगते हुए घर आया, तो मठ में भी आ गया। हम लोग वहां पर थे गांव में देहात, वहीं पर वो सब कलकत्ते के सब बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने बुलाया और कहा, सुनो सुनो तू भीख मांग रहा है, घर में कोई है? नहीं 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 कोई नहीं। स्त्री उस्त्री है? नहीं। और कोई घर वर है? कुछ है। तो तुम एक बात करो, दिन में कितना भिक्षा लेता है, कितना ले आता है? और थोड़ा सा कुछ जी कुछ पेट के लिए दे देता, एक बात करो हमारे आश्रम में आ जाओ और हम तुम्हें खिलाएंगे कपड़ा देंगे, और तुमको कुछ नहीं करना है, बैठ करके बस हरे कृष्ण हरे कृष्ण दीजिए दीजिए दीजिए, इधर उधर जाने का जरूरत, बस यही तुम कहना है हरे कृष्ण, गले में माला दे देंगे, अच्छे कपड़े इत्यादि दे देंगे, कोई भी कुछ नहीं करना। अच्छा तो मैं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा, नहीं जब तुम्हारा घर नहीं है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, कुछ भी नहीं है, आज ही सर नहीं, मैं कुछ दिन के बाद, क्यों हमारी स्त्री है
घर, लड़की है,
लड़की के एक शादी कर, अरे अभी तूने बतला ये कुछ नहीं है, घर नहीं, नहीं घर तो नहीं है, किसी तरह से छप्पर डाल करके हमारी ये लड़की और हमारी पत्नी रहती है, उसकी शादी कर करके तो मैं निश्चिंत होने के बाद में आ जाऊंगा, तभी नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इस तरह से गुरु जी ने कहा, देखिए आप लोग इसको रख दीजिए, नहीं रहा, जिनकी पूर्वजन्म की सुकृति कुछ होगी वही रह सकता है। ऊपर से देखना ये देखा जाता है कि मालूम होता है, एक बार ऐसे सुंदर मकान में, ऐसे सुंदर सब व्यवस्था में, जो घर में नहीं है बड़े ठाक बाट से रहता, तुम आ जाओ तो दिन भर परिश्रम करते हैं, मरते हैं किंतु नहीं आते। अब कृष्ण भक्ति में हम चले, महाप्रभु महाप्रभु जी राधा भाव से निमग्न होकर के बोल रहे हैं, आशा की झूली कंधों पर लिया, ये सांसारिक आशाएं हैं, ये संसार की आशाएं कभी नहीं दूर होगी, और परमार्थिक आशा वो तो अमृत सिंधुमय सिंधु की, अमृत के सिंधु के लहरें हैं, तरंगे हैं, बड़ी आनंद है। भक्त उसके लिए कलपता है, रोता है, चल करके अब क्या हुआ, आशा झूली लिया और क्या लिया,
चिंता कांता।
किस लिए चिंता, कि कृष्ण कफन में एक चिंता विशाल,
कहां जाऊं कृष्ण है ये चिंता विशाल,
मैं कहां जाऊं कृष्ण कहां मिलेंगे, मेरे हृदय दुख से फट रहा है, मैं कहां जाऊं कैसे मिलेंगे, ये चिंता विशाल, ये बड़ी चिंता है। तो वही चिंता कंथा, कंथा मैंने फटा हुआ है
गुदड़ी,
किस चीज की कंथा मैंने फटा हुआ है, ये क्यों कहा भाई, आशा इतनी हमारी दुराशा है, इतनी उन्नत है, जो मेरे लिए मिलना बड़ा भारी मुश्किल है, क्या बैठे हैं यहां पर संसार के कामों में, कामनाओं में, वासनाओं में लगे और सोचते हैं कि राधा जी के बाल्यदर्शन, राधा कृष्ण की गोलोक वृंदावन में जाकर के उनकी हम सेवा करेंगे, ये दुराशा नहीं तो क्या है, बहुत कठिन। किसी के जो कम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसलिए गुदड़ी फटी हुई, फटी मैंने निराशा। एक श्लोक रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कहा क्या, नैराश्य न जलत हृदय भक्ति प्राचीना भजन अतुलम श्रीमतांग श्रीमतांग क्या बोला, प्राचीनानां भजन अतुलम श्रीमतांग दृश्य, मुझे याद नहीं। मैं प्राचीन लोगों का भजन तब देखता हूँ रूप सनातन का। मैं प्राचीन लोगों का भजन देखता हूँ रूप सनातन ने अतुल वैभव को छोड़ दिया, उससे भी अधिक रघुनाथ दास गोस्वामी ने अतुल वैभव को छोड़ दिया। के नमक के साथ में खा रहे हैं और पिताजी ने वहां से रुपया पैसा सब कुछ भेज दिया है, ब्राह्मण नौकर चाकर सभी भेज दिए। यदि वो कहते लाखों लोग उनको प्रसाद नहीं दे जाते, अभी हम लोगों को अभी पूरी चले जाएं तो मांगने की जरूरत पड़ेगी, जब हम इन लोगों को मांगने की जरूरत है कितने लाखों लोग कहेंगे ये महाराज जी प्रसाद पा लीजिए हमारा जीवन सार्थक हो जाए। कितना कितना दे दें, सारे जीवन के लिए भी व्यवस्था करा सकते हैं, ऐसे लोग हैं। अभी हम लोग कहे जगन्नाथ जी से रोज प्रसाद आ जाए तो अभी आ जाए, तो उसको ग्रहण नहीं किया हुआ दिन रात, किस लिए कब कृष्ण मिलेंगे। तो इसलिए प्राचीन लोगों का जो भजन है कितना तपस्या पूर्ण है। कश्यप जी ने, अदिति ने, द्रोण ने, धरा ने सिर नीचे रखकर पैर ऊपर कर अंगूठे पर खड़ी हो गई, अंगूठे पर कितना 10,000 वर्ष बिना खाए पिए, करो तो एक मिनट भी करो तो जरा उंगली पर क्या, सिर के बल से खड़े हो तो 10 मिनट के लिए, और एक हाथ की एक उंगली पर खाना पीना 10,000 वर्ष तक कुछ नहीं किया, करो तो एक दिन जरा एक दिन एक हाथ उठाओ तो सारा दिन एक घंटा करो तो, अभी तो उठा दिया एक घंटा खड़ा कर दो तो तब उनको क्या मिला, वसुदेव के पुत्र के रूप में आए। बाली लीला दर्शन करने का आस्वादन करने का सौभाग्य नहीं मिला ना। राजा हरिश्चंद्र श्री दधीची ने कितना कठोर किया, बेकार का व्यर्थ गया। रूप सनातन ने कितनी कठोर, कभी राधा कुंड में, कभी श्याम कुंड में, कहीं कहीं नंदगांव में, टेर कदम में, भांडीर भट्ट में, क्या कहते हैं, हा राधे आप कहा, हा राधे राधे देवी के चलते, हे नंद सुनो कुत श्री गोवर्धन कल्पपाद तले काली नदी बंदी हो संता सर्वतई खेदो महाबीपलो महाबीपलो बीपल हो करके रोते रोते कहीं जमीन में लौट रहे हैं, चलते अकेले जा रहे हैं जमीन में लौट रहे हैं, भांडीर भट्ट में जाकर के लौट रहे, हे भांडीर बन आप इसके साक्षी हैं, भांडीर आप सच्चिदानंद घन वस्तु हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। कभी उद्धव क्यारी में चले गए, कभी कदम्ब टेर के नीचे चले गए और हाहा करके पुकार रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं भजन, कोई भजन है, कोई भजन है। तो इसको देख करके निराशा हो लग जाते हैं कि हमसे कृष्ण भजन नहीं होगा, किंतु जीवन किस लिए धारण कर रहे हो, तो इसलिए धारण कर रहा हूं कि वो बड़े दयालु, उनकी दयालु की वर्षा चारों तरफ विश्व में हो रही है, कभी यदि छिटक करके एक कण भी हमारे ऊपर में गिर गया मर गया। विश्व दरीची कारुण्य, विश्व भर में उनकी करुणा की बूंदे हैं, उसकी एक यदि गिर करके उसका एक छींटा भी यदि हमारे लग गया स्पर्श का हमारा जीवन, इसलिए कहते हैं कि चिंता कम था उड़ी गाय धूलि विभूष विभूति मलिन काय हा हा कृष्ण प्रलाप उत्तर। चिंता का सब शरीर का ना सब, अरे ये चिंता का सब सब, ये कृष्ण कैसे मिले वृंदावन की धूली में लोट पलोट करते हैं, मलिन गायब हो गया है। हा हा कृष्ण प्रहलाद, किसलिए रोते हैं? हा कृष्ण, बस यही प्रहलाद का उत्तर देते हैं और कुछ नहीं। राय रामानंद स्वरूप दामोदर कह रहे हैं किसलिए रो रहे हैं, तो बस और कुछ नहीं, हा कृष्ण बस। उद्वेग द्वादश, हाँ उद्वेग द्वादश आते लोभेर झूली नीलम आते भिक्षा भावे क्षीण कलेवर, उद्वेग इत्यादि द्वादश, द्वादश आते
अच्छा
उद्वेग, ये सब है व्यभिचारी अनुभव संचारी व्यभिचारी इत्यादि। लोभेर झूली नीलम माथे, इसको माथे पर ले लिया, भिक्षा भाव है किंतु भिक्षा नहीं मिल रही, आता तो ये भाव जितने हैं अष्ट सात्विक भाव और अनुभव व्यभिचारी ये नहीं मिल रहा, इसलिए भिक्षा के अभाव में एकदम दुबले पतले हो गए, क्षीण कलेवर हो। व्यास सुकादि योगीगण कृष्ण आत्मा निरंजन ब्रजिता जतो लीला इत्यादि। अब आज यही तक रहे, कल हम लोग वंशा कल
गंधर्वकेतौ गणेशानी मंदीकृतंदीवृंदारण्यमो जन राधा
कृष्ण की लीला माधुरी विशेष करके रूप माधुरी, देवी माधुरी, लीला माधुरी और हनुमान माधुरी, इनको श्रवण करके से वैष्णव से या गुरु से लोभ उत्पन्न हुआ, या लोभी ही पात्र है, उसी को सुखी हुई लौकी का पात्र बना, जिसको क्या कहते हैं
तंबुरा,
जब बाजा बनता है तब तंबुरा होता है,
तानपुरा
तंबुरा भी उनको, किंतु ऐसे उसको लेकर के चलते हैं वो तुम्बा है, जो भी लोग तुम्बा का प्रभाव है उसी में खाना पीना जो पानी पीने का उसमें जो कुछ होता है उसमें भर लेते हैं, वहां करके फिर उसको निकाल करके अपने खा लेते हैं, तो ये लोग ही पात्र है। ओम लीला माधुरी का स्वागत करते हैं, ये लोग हो गया रागंगा भक्ति का वर्ग क्या, यदि लोग हो गया तो लौकी वैदिकी जितने धर्म है वो छोड़, जहां लोग सचमुच में हुआ, जैसे एक गाय बैल को भूख लगा है और वो देखता है कि वहां पर खेत है किंतु मेरे नहीं है, मेरे तो बहुत दूर से ऐसे घूम करके जाना पड़ता है, तो कुत्ता फांता हुआ मेरी प्रतीक्षा नहीं करता, रास्ते की प्रतीक्षा में वो तो सीधे चलता है,
जितना जल्दी
कोई भी रास्ता उसके लिए जरूरत नहीं है, ऐसे जिस व्यक्ति को इसका लोभ हो जाता है वो वेद धर्म को प्रत्याग, वेद धर्म मैंने जिस पत्नी का तुमने
हाँ पानी ग्रहण किया है, जीवन भर निभाएंगे।
जिस पति के हाथ में अपना मैंने हाथ दिया है,
सारा जीवन तक उसके संबंध है,
मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। ये देखें पिता
पुत्र का जन्म दे करके
जब तक पीड़ित रहेगा पुत्र का पालन पोषण करेगा, बुरा होने पर पुत्र पिता माता का पालन करेगा। समाज के साथ में एक कर्तव्य है,
देश और राष्ट्र के प्रति एक कर्तव्य है,
देश के और राष्ट्र के प्रति गुरुजनों के प्रति उसका कर्तव्य है। क्या
अतिथि इत्यादियों के प्रति भी कर्तव्य है,
किंतु वो वेद धर्म जबकि का अतिथि क्योंकि अतिथि देखो
ये सब संबंध है।
पूर्वजों के प्रति अपना संबंध है, उनकी हम ऋणी हैं, देवताओं के प्रति हम ऋणी हैं, उनके लिए पंच सुना यज्ञ इत्यादि किया जाता है देवताओं के लिए, ये भी जरूरी है।
इसको दश
पौन होम या क्या कहते हैं ये सब,
तो ये सब वेद धर्म क्या कहते हैं।
वेद के दो दो धर्म है,
एक रहस्यपूर्ण है
और एक है बाहरी। भीतर क्या है, वेद के प्रतिपाद्य भगवान कृष्ण और उनकी भक्ति है,
वेद वेदांत बनी है सबका,
किंतु बाह्यतः शरीर संबंधी मन संबंधी जो धर्म है वो वेद का वेद त्रयी
धर्म तक लाया गया,
वो शरीर के लिए मन इत्यादि के लिए है। तो ऐसे वेद धर्म को जो बाहरी है उनको तो वो छोड़ देता है,
छोड़ करके मेरा योगी मन योगी होकर के बिठाई,
मन योगी होकर।
योगी लोग जिस प्रकार से
शंख का कुंडल अपने दोनों कानों में मोटा मोटा धारण करते हैं,
उसी प्रकार से कृष्ण लीला मंडल को
शुद्ध शंख मंडल के रूप में धारण करते हैं। कृष्ण लीला का जो वर्णन,
कृष्ण की जो लीला कथाएं हैं,
उसके श्रवण में ही अपने कान में वो कुंडल धारण,
शंख का कुंडल
लीला कथाओं को ही अपने कानों में सब समय धारण करता है। सामान्य योगी
शंख कुंडल
शंखारी गणेरी प्रस्तुत करे, शंखारी होते हैं
शंख को काट करके चूड़ी बनाते हैं
गोल गोल गोल,
किंतु इस कुंडल को बनाने वाले
कौन है, सप्तक सुखदेव होता है।
कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया है श्रीमद् भागवत में,
हमारा मन रूपी योगी कृष्ण लीलाओं को
अतः भागवत रूपी कुंडल को
इसमें साक्षात बादरायण रूप बादरायणी बादरायण सुखदेव
सुख रूप कारीगर गठन कर लिया जाए,
बादरायण मैंने वेदव्यास और सुखदेव गोस्वामी
इसका गठन
इन लीलाओं का। योगी जहां जहां चाहे योगी जो जो कुछ चाहता है हमारा मन
योगी उसे स्वीकार किया है,
उसने दूसरे रूप में स्वीकार किया है, इसने दूसरे रूप में स्वीकार किया है। सामान्य योगी अलाभो निर्वृत कमल मंडल लौकी का कमंडल धारण करता है और दीक्षा पात्र धारण करता है। हम लोगों का योगी कृष्ण रूपी कृष्णा रूपी कृष्ण माधुरी के का लोग ये उसके लिए कमंडलू है, कृष्णा मने लोग और थाली कर लिया थे किसको, कृष्ण को मैं पाऊंगा ये आशा, आशा ये भोजन का पात्र और कृष्णा मैंने पानी पीने के लिए वो कमंडल, ये कृष्णा और लो आशा इसी आशा से गोली निकल आता है। आशा रूप झोली कान के ऊपर नहीं झुलाई जा, आशा रूप कान में झोली को उसने यहां पर झुला रखा है। क्यों पाए कृष्ण पाएगा, कैसे कृष्ण मिलेंगे, बस उसको यही चिंता है, यही उसके लिए गुदड़ी है कंथा है गुदड़ी है और कोई उसको चिंता नहीं। हम लोगों के पास में 50 चिंताएं हैं और ये सब का जाल हम मकड़ी की तरफ में खुद ही हम बोले बना लेते, हमारे पूर्व कर्मों के संस्कार से ये जाल बना हुआ है। जब तक नहीं भोगेंगे ये नहीं छूटे। हम समझते हैं कि हमने क्या किया जो ये हुआ, क्या क्या तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों के वजह से ये जाल बना हुआ है, उसका भोग करना पड़ा। यदि भजन नहीं किया, और वो भी भजन करने वाले सभी को नहीं, जो उस स्तर है एक भक्ति का, एक स्तर है, उस स्तर पर जब पहुंचेंगे तो उसके जितने कर्म फल नहीं सकते हो जाए। अंततः नमाभास होना चाहिए, नमा प्राप्त नहीं दूर होंगे, नमाभास से ही समस्त अनर्थ इत्यादि दूर हो जाते हैं, अपराध दूर हो जाते हैं, अवसर। इसलिए अंततः उस स्टेज पर हमको पहुंचना चाहिए नमाभास। नमाभास में संकेतन अवहेला नहीं हो, कोई बात नहीं है कि तुमको कर, किंतु अज्ञानी बल के संग हम लोगों के लिए नमाभास ऐसा नहीं है। हम लोगों के लिए सीधा साधी अपराध हो जाएगा। नमाभास होता किस के लिए?
जो लोग नहीं जानते
हो, जानते नहीं हो करते, जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, नहीं जानते हैं भगवान का नाम ले, उनके लिए यह नमाभास। और हम लोगों के लिए ऐसा करने तो नमाभास वज्र अपराध हो जाएगा।
वज्र
जानते हैं, हमने गुरु वचनों से सुना है, शास्त्रों में लिखा है, इसे ना पूजी दे देवा देवी देवताओं की, और दूसरों की पूजा मत करो, उनको सम्मान यथा योग्य देना है वो दो, क्योंकि भगवान की तरफ से ये संसार के वो आधिकारिक देवता हैं, उनको यथा योग्य। चींटी को हम यदि सम्मान कर सकते हैं क्योंकि उसमें भगवान का अधिष्ठान है, तो उनको क्यों नहीं देंगे? हम सब लोगों का प्रणाम करते हैं, जैसे भी कोई व्यक्ति है उनको प्रणाम करता है, उनको यथा योग्य आदर देते हैं, इसलिए उनको भी करना है। किंतु समाप्ते ना नहीं बस सब विच्छेद पाषण भी भविष्य जब तू नारायण आदि देवम, नारायण आदि देवम अन्य देवता के साथ में नारायण का बराबर समझता है, जो नारायण के समान है ऐसा समझ लेगा स्वतंत्र ईश्वर के रूप में उनको, तो पाषाणिक भविष्य होते हैं, वो निश्चित रूप में पाषाणिक भक्ति भी उसकी चौपट हो जाएगी। तो चिंता आशा, आशा की झोली लेकर के रखते हैं, कैसे कृष्ण मिलेंगे, कैसे कृष्ण मिलेंगे, कब कृष्ण मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु जी का अपने जीवन में ये चरित्र दिखला करके खूब कह रहे हैं। योगी लोग 500 विभूति धारण करते हैं, 500 मैंने धूली वो राष्ट्र, हमने देखा है कड़कती हुई माघ के महीने में जो ठंड पड़ती है और समय वर्षा होती है, जो भी उनको देखा कि तुम दोनों लोग लगाए हैं और यहाँ पर जटा जूट बांध रखा है, और भोर में 4 बजे स्नान करके और ठाठ से बैठे, कोई कोई थोड़ा सा धूमी जमा लेते हैं लकड़ी जला करके, और कोई जगह सा विभूत लगा करके चारों तरफ से भूत लगा लेते हैं और बैठते हैं, उनको सिर्फ कुछ नहीं करते। ऐसे इन लोगों ने जो धूप जो जो बोले पांच मैंने राख इत्यादि ये विभूति को विभूति मैंने धारण करते हैं ये लोग। हमारा मन रूपी योगी धूली विभूति द्वारा मलिना का भी अच्छे कैसे, ये क्या विभूति भूति है? हा कृष्ण ये प्रभात वाक्य है, हा कृष्ण ये रूप प्रभात वाक्य उत्तर दिया था। सामान्य योगी गण द्वादश की बल हाथे बल गया था, साधारण योगी लोग द्वादश बल मैंने चूरिया ये सामान्य योगी। और हमारा मन लो कि योगी हाथ में अष्ट सात्विक विकार, मन का वेग, मन का मैंने वेग मैंने मन वेदी विकार, मैंने एकदम कभी रोता है कभी चिल्लाता है कभी ये कंप विकार निश्वास चापल्य चिंता, यह द्वादश बल स्वभाव आ रहा है। अष्टसात्विक 8 1 2 3 4 5 चापल्य और चिंता एक ले लिया, चापल्य ही चिंता ले उसको एक कर दो, यह द्वादश स्वभाव आ रहा है। दशेंद्रिय शिष्य करी भागवत शास्त्र बने करिया से वर्णन यहाँ तर्जा पड़े अनुख महाप्रभु भागवत में जैसा लिखा गया है उसी के अनुसार में ये तर्जा तर्जा मैंने क्या
पहेली
पहेली दस इंद्रिय शिष्य करी महाबाबुल नाम धरी शिष्य नैया करी मोर देह स्वदन सदन विषय भोग महाधन सब छाड़ी गेला वृंदावन दस इंद्रिय को शिष्य किया मैंने अपने वशीभूत कर दिया दस इंद्रिया जैसा वो कहता है जैसा वो कहता है जैसे शिष्य सत शिष्य सत गुरु की जिस प्रकार से सेवा करता है बिना उनकी इच्छा के कुछ भी नहीं करता उनकी इच्छा से सब कुछ करता है उसी प्रकार से दस इंद्रिया उनको जो कहता है वैसा ही करता है इसका ऐसा क्रोध कर लो तो क्रोध कर या जब जैसा आप देते हैं इंद्रिया उनके जितन की हो जाती है इनको सबको लेकर के महाबाहु नाम धरी बाहु माने पागल महापागल होकर के इसलिए पागल लोगों की दृष्टि में पागल और उसकी दृष्टि में जगत पागल और जगत के सब लोग जितने हैं उनके दृष्टि में वो पागल करते हैं नित्यानंद प्रभु जी ने महाप्रभु जी के घर में निमाई पंडित के घर में आकर के और अपना धोती जो पहनते थे बहिर्वास बहिर्वास को निकाल करके खोल करके और यहां सिर पर बांध दिया और उनके घर में मैया मैया माता जी सती जी के पास में कभी नंदे शिवाजी की पत्नी मालिनी देवी के गोदी में बैठ करके बस बैठ जाते और वो समझ जाती जो दूध पीना चाहता है वो किसी चीज से लेकर के उनके चम्मच इत्यादि से उनके मुख में और जैसे बच्चे का पालन करते हैं ठीक वैसे ही ये लोग महापुरुष अवधू और कभी कभी सोने का कुंडल पहन करके सोने का भी हाथ मान लेकर के पान की बातें में चले जा रहे हैं इनका कोई भी वेद के कंट्रोल में ये लोग नहीं है
वेद वेद के अधीन नहीं है
तो ये लोग दस इंद्रियों को अपना शिष्य बना करके हम लोगों के एक इंद्रिया भी हमारे शिष्य नहीं बल्कि अभी स्वामी है वो और हम उनके शिष्य हैं जैसा हमारा मन कहता है जैसा हमारे आंख कहता है जैसा हमारा जीवा कहती है बस विशेष करके जीवा रहा है हमारी स्वामी नहीं है वो हमको क्या कर रही है वृंदावन से ले जा रही है कहां भोग ग्राम में ले जा रही है और ये महा पुरुष क्या कर रहे हैं दस इंद्रिय को शिष्य करके वो भोग इंद्रियों से निकल करके जा रहे हैं एकदम वृंदावन ठीक उल्टी दशा दिशा विचार करके आप लोग ऐसा ही करेंगे शिष्य लिया करी लगम मोर देह स्व सदन विषय भोग महाधन सब छाड़ी गला वृंदावन मोर देह स्व सदन हमारा जो शरीर है वो मेरा घर है मैं नहीं हूं हरा समझ में हमारा शरीर मैं नहीं हूँ
मेरा घर है
ये मेरा ही कुछ दिनों के लिए किराए में लिया हुआ ये घर है विषय भोग महाधन और इस शरीर में रहते हुए अब ये संसारिक विषय भोगों को ही अपना प्रचुर संपत्ति महाधन समझता है ऐसे जोड़ रखा है यदि कोई भिखारी अतिथि या वैष्णव भी जाए उसमें से थोड़ा सा दे दीजिए नहीं देगा यदि खास कोई भक्त भी आए तो उनके घर में जाओ तभी हमारे पास तो कुछ ही नहीं ऐसे सीधा साधा का उसमें से इतना ही देंगे जो सूद का भी उसमें सूद के बराबर भी इतना ही अधिक से अधिक दे देंगे तो दो कौड़ी पैसा लेकर के घर से इतना आटा वो भी यदि बहुत पुराना हुआ किसी काम में नहीं आया तो वो दे देंगे या ऐसे कर करके संक्रांति के दिन में मैच करके दे देंगे भले ही जगह घर में हो जाए चोरी हो जाए आग लग जाए कोई बात नहीं एक पैसे की भी नुकसान जगत में नहीं होना चाहिए नुकसान किसको कहते हैं हानि लाभ किसको कहते हैं हम लोग नहीं समझते महाराज हरिश्चंद्र ने क्या किया शिव ने अपना शरीर दे दिया दधीचि ने अपना शरीर दे दिया शिव ने भी ऐसा दे दिया
और हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया किया एक दस सब जलांजलि लेकर के तिल और
पानी
पानी लेकर के गंगा जल में सब समर्पण करके चले गए जगन्नाथपुरी चले गए। इस जगत के भोग को नहीं समझते ये लोग, उनका सब छोड़ करके सब छाड़ी गया वृंदावन सब छाड़ी गया वो जगन्नाथपुरी में चले गए। रघुनाथ दास गोस्वामी सनातन गोस्वामी सभी लोग चैतन्य महाप्रभु को देखो सब छोड़ करके हमारे जितने भी आचार्य हैं वैष्णव आचार्य सब छोड़ ये धन नहीं है किंतु हम लोग इसी धन के लिए दो पैसे के लिए भी वैष्णव से भी विरोध करते हैं। वृंदावने प्रजागण जतोस्थाव जंगम वृक्षलता गृहस्थ आश्रमे तार घरे भिक्षाटन फल मूल पत्रासने ए वृत्ति करे शिष्य सने अब वृंदावन में वो पहुंचे संकोच होकर कौन महाप्रभु जी कह रहे हैं मेरा मन मोर मन वृंदावन अन्य दूसरे का जो है वो मन है और मेरा मन क्या है वृंदावन। उस वृंदावन में पहुंचे वृंदावन में आए भूख तो लगी है ना कृष्णा की झोली भी है और भूख भी बड़ी लगी है प्यास भी लगी है तो जितने वृंदावन में स्थावर और जंगम है स्थावर जंगम माने पेड़ इत्यादि जो है स्थावर है लताएं इत्यादि स्थावर है और कोयल मयूर सूप सारी मनुष्य मनुष्य इत्यादि हरिण गाय ये सब क्या है
जंगम।
तो ये जितने भी वृंदावन में स्थावर और जंगम प्राणी हैं वृक्ष लता ये क्या है
गृहस्थी
ये गृहस्थ इनको भूख लगी है तो कहां जाएंगे गृहस्थों के आश्रम। तो ये लोग कृष्णा की झोली लेकर के भूखे प्यासे कहां जा रहे हैं भांडीर बट के नीचे जा रहे हैं कोई जा रहे हैं बंसी बट के नीचे जा रहे हैं कोई जमुना के किनारे उपवन में घूम रहे हैं प्यास लगी है तो क्या करेंगे जमुना का पानी पिएंगे ना तो जमुना में जामुन जीवन के विपरायण
मानस
वो वहां से वही मांगेंगे क्या मांगेंगे जामुना
जीवन
जामुन का जीवन क्या है जमुना जी का कृष्ण की लीला तेरी लीलाएं जो हैं जो उनके ऊपर में जो होती है लीला जमुना जी से भिक्षा के रूप में वो मांगेंगे ये गृहिणी है किसकी गृहिणी है ब्रजेंद्र नंदन की गृहिणी है इसलिए ये सब पानी पीने के लिए आम का रस जैसे होता है या और कोई चीज होता है तो ये जमुना जी इस चीज को देंगे और तो ये गृह कुटुंब ये सब लोग हैं स्थावर और चंद्र इसीलिए प्रत्येक रात में एक एक रात में रूप सनातन जी एक एक वृक्ष के नीचे रहते हैं इसलिए अलग अलग वृक्षों के नीचे लताओं के नीचे कृष्ण की अलग अलग बड़ी रसमयी लीला कथाएं हुई हैं जैसे बंसीबट में जो हुआ और भांडीर बन में हुआ दोनों एक नहीं है रस भांडीर बन में तरह तरह की लीला है और वही सूर्य कुंड में वही होगा वही राधा कुंड में वो दूसरे तरह की वहां पर दूसरा रस है ये लोग गृहस्थ हैं सब राधा कुंड भी राधा कुंड ये गृहिणी है श्याम कुंड जी गृहस्थ है पुरुष है ऐसे ही सब समझे देखो भाई तो करते जाओ तो तार घर है भिक्षा उनके घर में भिक्षा कभी सूर्य कुंड में कभी निधुवन में कभी सेवा कुंज में कभी बंसीबट में कभी नंदगांव में कभी जरूरी नहीं है सब जगह वो मिले
माधुपुरी
माधुपुरी मैंने रसगुल्ले हैं या खीर मिले खीर भी मिल सकती है तो राधा कुंड इत्यादि में खीर प्रस्तुत है और चले जाओ नंदगांव के
फिर कदम
नहीं वहां पर उद्धव क्यारी में जाओ, वहां पर नीम और बैगन का कड़ुआ है ना, कैसे कड़ुआ बटी खीर के, किंतु जब तक वो नहीं होगा तब तक खीर खाने में मीठा मजबूत नहीं लगेगा। इसलिए आदमी जब खीर खाना होता है बीच बीच में नमकीन या ऐसी चीजें ले लेते हैं, ऐसे समझो सब तरह की दीक्षा चाहिए। कल हम लोग एक जगह गए थे रूप किशोर वकील के यहाँ,
हरे कृष्णा,
तो वहां एक आदमी ने हमसे पूछा कि महाराज जी ये मैं एक साधु को संत को देखा, हरिद्वार में देखा, ओह मैं एकदम मुग्ध हो गया। अरे क्या देखा, बड़ी विचित्र देखा, ऐसा देखा नहीं, कहीं ये चल रहा था बहुत उत्सव बड़ा था, तो उसमें बड़े साधु लोग सब निमंत्रित थे, तो वो तरह तरह के चीजें सब बनी थी, लड्डू पेड़ा बर्फी मान भोग पूरी कचौड़ी इत्यादि बहुत तरह की चीजें, साधु संत लोग उसमें कुछ लोग आरोग रहे, और वो महात्मा जी अपना कमंडोल लेकर के पहुंचे और कहा जी इसी में भक्त, तो उन लोगों ने सारी चीजें सुनी। मैं देखा जी ये भरकर के क्या करते हैं, मैं जरा देखूं तो मैं गया देखा, एक पेड़ के नीचे सबको ऐसे ऐसे कर दिया एक जगह, और कर करके आंख बंद करके उन्होंने सबको एक जगह, उसमें तीखा कड़वा नमकीन इत्यादि जो कुछ है सबको एक जगह कर करके खा लिया। महात्मा जी आप तो बड़े सिद्ध महात्मा लगते हैं, आपने ऐसा क्यों किया, बहुत परिश्रम से तो ऐसा किया गया था अलग अलग। अरे बेटा जब पेट में चला जाता है देते हैं सभी एक ही नहीं जाते हैं, एक ही है द्वितीय नास्तिक मैंने मैंने कहा जी आपका ये परम दुर्भाग्य है कि ऐसे संत कहने वाले व्यक्ति से आपको भेंट हुई और उनके प्रति आपकी